बाद में महानाम के काव्य में पूरक ग्रंथों की रचना की गई। 13वीं शताब्दी में धम्मकीर्ति की रचना इनमें प्रथम तथा विशालतम है। पराक्रम बाहु कोष्टक 12वीं शताब्दी इसका विषय है, जिसे राष्ट्रीय नायक के रूप में चित्रित किया गया है। ये पूरक ग्रंथ प्रायः चूल वंश नाम से जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ गौण वंश भी प्राप्त हैं, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में किसी महत्वपूर्ण घटना अथवा कथानक पर लिखे गए हैं। महावंश पर लिखित वंशत्थ प्रकाशिनी कोष्टक 10वीं शताब्दी इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत तथा श्रीलंका दोनों के विषय में बहुत तेरी ऐतिहासिक सूचनाएं दी गई हैं। बहुसंख्यक गद्यात्मक कथाओं के संग्रह भी मिलते हैं, जिनकी वस्तु सामग्री अंशतः ऐतिहासिक है। धम्म नंदनीकृत सिहल पत्थुपकरण तथा रट्ठपालकृत सहस बत्थुपकरण ऐसी ही कथाओं के संग्रह हैं। महामंगलकृत वृद्ध घोषुपति 14वीं शताब्दी प्रसिद्ध विद्वान बुद्ध घोष का जीवन चरित्र है। ये सभी रचनाएं पाली भाषा में हैं। इसके बाद सिंहली भाषा में लिखे कई ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। प्रारंभिक काल के इतिहास के लिए ये पाली स्रोतों पर आधारित हैं, किंतु 13वीं शताब्दी के बाद के इतिहास के लिए ये प्राथमिक स्रोत हैं। इनमें बुद्धपुत्र रचित पूजावलिय 13वीं शताब्दी लेखक के नाम से रहित राजा वलिय तथा देव रचित कृत निकाय संग्रह 14वीं शताब्दी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1872 में संपूर्ण हुए पोल बत्ते वदाने लिखित महाराजा वलिय में डच तथा अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन का विवरण है। तमिल देश में इतिहास लेखन डैश तमिल भाषा में उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक वस्तु सामग्री प्राप्त है, एटुट तो गई नाम से ज्ञात कविताओं के 8 संग्रहों के कुछ खंड हैं। इनमें पूर्णा नरु संभवतः 2री शताब्दी तथा पदिरुपत में पांडे तथा चोल शासकों का विवरण है। पदी तख्त पत्तू में चेर शासकों की 2 प्रमुख शाखाओं के अविच्छिन्न इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण विवरण मिलते हैं। अन्य संग्रहों में यत्र तत्र बिखरी ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं, जिन शासकों का प्रायः विशंसनात्मक विवरण इन कविताओं में मिलता है। उनमें पांडे नेडू जैनीय 205 ईस्वी चोल शासक करिकालन कोष्टक में 2री शताब्दी प्रमुख हैं। संभवतः 2री शताब्दी में ही संकलित पत्तू पाटू नामक एक अन्य तमिल संग्रह भी इन्हीं शासकों को कथानक का विषय बनाया गया है। पति नेन किलक नक्कू कोष्टक 18 अप्रधान कृतियां बाद का संग्रह है, जिनमें इन शासकों के समय से 9वीं शताब्दी तक का इतिहास संग्रहित है। परवर्ती काल में तमिल देश का इतिहास लेखन कथाओं में परिवर्तित हो गया है। नकीकरण कोष्टक 8वीं शताब्दी या बाद में द्वारा इरयनार की अहपोरुल पर की गई टीका वह प्राचीनतम कृति है, जिसमें प्राचीन इतिहास को व्यवस्थित रूप देने की चेष्टा की गई है। इसमें राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा साहित्य का इतिहास अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है, और परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्राचीन काल को 3 संगमों अथवा युगों में बांटा गया है। विभाजन का आधार 3 भिन्न नगरों में क्रम से विद्वानों के 3 संस्थानों का अस्तित्व है। तीसरा संगम 2री शताब्दी ईस्वी की घटनाओं का प्रतिचित्रण करता है। विद्वानों के संरक्षक पांडे शासकों का भी उल्लेख हुआ है। इनमें पौराणिक उद्धरण भी मिलते हैं। यहाँ यह जोड़ना आवश्यक है कि शिल्पदिकारम के अनुसार पांडे चंद्रवंशी थे। यही परंपरा पद्म पुराण में भी स्वीकृत है, जो इन्हें तुर्वसु लोगों से संबंध करता है। प्राचीन तमिल साहित्य के पांच महाकाव्यों पेरुंकापियम महाकाव्य में एक सिलपद्दीकारम है। यह तीसरे संगम की रचना है जो संभवतः किसी जैन लेखक द्वारा लिखी गई थी। इसका दृष्टिकोण विशाल तथा सहिष्णुतापूर्ण है। एक अन्य महाकाव्य मनी मेक्कलाई एक बौद्ध लेखक की रचना है। इसमें भी वही सहिष्णुतापूर्ण दृष्टिकोण है। यद्यपि बौद्ध दर्शन को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है, इनके अतिरिक्त पांच गौण काव्य भी लिखे गए थे। शिल्पदिकारम को द्वितीय शताब्दी में केरल के शासक सेंगुटुटवन के भाई इजांगो की रचना माना जाता है। इसमें पृष्ठभूमि के रूप में इस शासक को महान जननायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, किंतु इसमें समान रूपेण करिकालन चोल का भी प्रशस्ति गायन है। मनी मेकलाई मदुराई के वणिक शासन की रचना है, जिसे इलांगो का समसामयिक एवं मित्र बताया जाता है। यह स्पष्टतः गलत है, क्योंकि उसकी नायिका दिनंगनांग के तर्कशास्त्र का अध्ययन करती दिखाई गई है, जिसका समय चौथी शताब्दी ईस्वी के पूर्व नहीं है। दसवीं शताब्दी में पल्लवों, जो मूलतः कांची प्रदेश में थे, जिसे तमिल साहित्य में तोड इम डलम मंडलम कहा गया है, कि पांडवों के ऊपर निर्णयात्मक विजय हुई। इस समय से विशेष रूपेण 12वीं शताब्दी से बहुत तेरे ऐतिहासिक लेखन हुए। इनमें से अब कुछ अप्राप्य हैं, किंतु अभिलेखों में उनके उल्लेख प्राप्त होते हैं। जैन गुंडार रचित कलिंगतु परिणी तमिल युद्ध काव्य है, जिसमें कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1178 ईस्वी के कलिंग अभियान का विवरण है। यह अपनी काव्यात्मक उत्कृष्टता के कारण प्रसिद्ध है। यह कुलोत्तुंग के शासनकाल के अंतिम दिनों में लिखा गया तथा उसके बाल्यकाल से लेकर उसके विविध विजयों तक की चर्चा करता है। ओटकत्तन एक अन्य उल्लेखनीय लेखक हैं, जो कुलोत्तुंग प्रथम के बाद आने वाले तीन शासकों के दरबार में रहा। चोल इतिहास लेखन के प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि तमिल तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में ऐसी प्रभुत ऐतिहासिक रचनाएं हैं जो मंदिरों, पवित्र स्थानों से संबंध कथाओं तथा इतिवृत्तों के रूप में है। उदाहरणार्थ दक्षिण भारतीय मंदिरों के ऊपर रचित स्थल पुराणों की संख्या 500 या 500 बताई जाती है। ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में इनका अध्ययन होना विशेष है, तथा ये कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। केरल में इतिहास लेखन डैश इस प्रदेश की उत्पत्ति के विषय में केरल परंपरा केरोलो उत्पत्ति नामक ग्रंथ में मिलती है, जिसे भार्गव परशुराम से संबंध किया गया है। इस कथा के विविध रूप केरल में लिखे अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। यह ग्रंथ केरल के प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास को पुराणों के सार्वभौमिक इतिहास से संबद्ध करता है। प्रारंभिक तथा संगमकालीन राज्यों के विवरण अस्पष्ट तथा अनिश्चित हैं। इनके शासक कथाओं में लुप्त प्रायः हो गए हैं। परंपरा के अनुसार इन प्राथमिक चेरों के पश्चात एक जनक्रांति सी हुई, जिसमें शासकों के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें रक्षकों के रूप में पांच शासकों का चयन होता था। ये रक्षा पुरुष कहलाते थे। इन पांच रक्षा पुरुषों में एक सभापति नियुक्त किया जाता था, जिसकी काला अवधि 12 वर्ष होती थी, जबकि अन्य 3-4 वर्षों के लिए नियुक्त होते थे, और गणतंत्र के चार प्रदेशों का शासन कार्य इन्हें सौंपा जाता था। सभापति को पेरुमाल कहते थे। परंपरा में 25 पेरुमालों का उल्लेख है, जो इस पद्धति की निरंतरता की दीर्घकालीनता प्रमाणित करता है। केरल के इन चार प्रदेशों के विषय में केरलोत्पत्ति का कथन है कि तुल्लु प्रदेश आधुनिक कर्नाटक है, जबकि मुसक राठ प्रदेश का प्रतिनिधित्व आधुनिक के उत्तरी भाग से होता है। 11वीं शताब्दी में अतुल ने मुसक वंश की रचना की, जिसमें परशुराम से लेकर लेखक के समसामायिक श्रीकंठ तक उस प्रदेश के शासकों का विवरण अभिप्रेत है। यह ग्रंथ कई सर्गों में विभक्त है। कुछ अंश अपर्याप्त प्रमाणिक हैं। संभवतः अतुल ने मंदिरों के लेखों तथा कथाओं से पर्याप्त सहायता प्राप्त की होगी। प्रवर्ती ऐतिहासिक कृतियों में दामोदर कोष्टक में 14वीं शताब्दी रचित शिव विलास तथा किसी अज्ञात लेखक द्वारा रचित रामबरम विजय उल्लेखनीय है। दोनों ग्रंथ संस्कृत में है तथा ऐतिहासिक कृतियों की अपेक्षा साहित्यिक कृतियां अधिक हैं। प्रथम में यद्यपि 14वीं शताब्दी के केरल के राजनीतिक इतिहास का चित्र सुरक्षित है, तथापि यह मुख्य रूपेण सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व का ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक स्वास्ति तिरुनाल राम बमन कोष्टक 1812 से 1847 के जीवन पर लिखा गया है। इनके अतिरिक्त मलयालम में विविध लोक परंपराएं सुरक्षित मिलती हैं। कोंगू तथा कादम्बों की परंपराएं कोंगू मूसक के पूर्व में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। इसकी ऐतिहासिक परंपराएं कोंगू देश राज कल नामक एक तमिल इतिवृत्त में सुरक्षित है, जिसका संकलन संभवतः 17वीं शताब्दी में प्राचीन किंतु अब अप्राप्य स्रोतों के आधार पर हुआ था। यह इतिवृत्त एक राष्ट्रकूट राजवंश से प्रारंभ होता है, जिसकी स्थापना इसके अनुसार शक संवत की प्रारंभिक शताब्दियों में हुई थी। इसे स्वीकार करने पर यह मानना होगा कि यद्यपि दूसरी शताब्दी में यह प्रदेश पदरी रूपत्तु तथा शिल्पदिकारम के अनुसार चेरों द्वारा शासित था। तीसरी शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने चेरों को पराजित कर यहां अपना प्रभुत्व जमा लिया। अंतिम शासक विक्रम को चोल पांडे केरल तथा मलय प्रदेशों पर विजय प्राप्त करते दिखाया गया है। पुनः यह गंग राजवंश की चर्चा करता है, जो संभवतः 4वीं शताब्दी में प्रभुत्व में आए। गंग शासक जैन थे। इतिवृत्त गंगों के उत्तराधिकारी क्रम का अपेक्षाकृत विस्तृत तथा ठीक विवरण प्रदान करता है। 9वीं शताब्दी के अंत में कोंगू पर चोल शासक आदित्य प्रथम का आक्रमण हुआ और तब से यह चोल साम्राज्य का अंग बन गया। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह होयसल शासक विनयादित्य द्वारा विजित हुआ और इसके बाद से इतिवृत्त होयसलों के कोंगू प्रदेश तथा कभी कभी तमिल प्रदेशों में शासन की चर्चा करता है। 14वीं शताब्दी से यह विजयनगर साम्राज्य का अंग बन गया और इस समय से इतिवृत्त इस नए शासन वंश के विविध विवरणों की चर्चा करने लगता है। इतिवृत्त 17वीं शताब्दी में केंद्रीय शक्ति के ह्रास के पश्चात विजयनगर के प्रांतीय शासकों के पारस्परिक युद्धों के विवरण से समाप्त होता है। कादम्ब वंश गंगों का समसामयिक था और उनके समान ही पल्लवों का अधीनस्थ था। इसका अधिकार क्षेत्र कर्नाटक का तटीय प्रदेश तथा महाराष्ट्र था। इसका संस्थापक मयूर शर्मन था, जिसने पल्लवों से अपनी स्वतंत्रता घोषित की तथा वैजयंती में नई राजधानी बनाई। अज्ञात तिथि की तथा एक अज्ञात लेखक की कृति मयूरवर्म रचित नामक चंपू काव्य में उसके जीवन चरित्र का विवरण प्राप्त होता है। होयसल इतिहास लेखन डैश 12वीं शताब्दी में होयसल चालुक्य के प्रभुत्व से मुक्त कर कर्नाटक प्रदेश की प्रमुख शक्ति बनकर उभरे। बलाल तृतीय कोष्टक 14वीं शताब्दी के दरबारी कवि विद्या चक्रवर्ती तृतीय, जिसने काव्य शास्त्रों पर अपनी टीकाओं के दृष्टांतों के रूप में अपने संरक्षक के ऊपर कई अभिशंसनात्मक श्लोक लिखे के अनुसार यादव थे। इसी लेखक के पितामह विद्या चक्रवर्ती द्वितीय का गद कर्णामृत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होयसल इतिहास ग्रंथ है। यह होयसल सोमेश्वर शासन 1236 से 1254 का उसके जन्म से लेकर विवाह तक का जीवन चरित्र है, जो उसके लिए संभवतः 1252 में लिखा गया। यह ग्रंथ भी परंपरागत काव्य रचना के अनुरूप है, जिसमें विभिन्न पुराण कथाओं को नायक के जीवन से सन्निविष्ट करके दिखाया गया है। तथापि अभिलेखों इत्यादि स्रोतों से यह प्रदर्शित होता है कि गर्द करना अमृत का इतिहास लेखन पर्याप्त शुद्ध है। होयसल इतिहास लेखन का एक बहुत बड़ा भाग कन्नड़ भाषा में है। होयसल राजवंश के पतन के बाद भी इस पर कई ऐतिहासिक कृतियों की रचना हुई। इस राजवंश पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथों में होयसल राज विजय, होयसल राज कुलवंश एवं विभिन्न स्थल पुराण उल्लेखनीय है। लक्ष्मण शास्त्री रचित गुरुवंश महाकाव्य 18वीं शताब्दी का प्रारंभ कर्नाटक के धार्मिक पुस्तक में वेदांत अद्वैत आचार्यों का इतिहास है, जिसमें विजयनगर राज्य की स्थापना तथा इसके नए शासकों हरिहर बुक्का एवं अंतिम होयसलों के पारस्परिक संबंध तथा अंततः होयसल राज का एक नए साम्राज्य में विलीन हो जाने का विवरण प्राप्त होता है। आंध्र में इतिहास लेखन 15वीं शताब्दी के प्रथम चरण में विजयनगर साम्राज्य में इसके विलय के पूर्व आंध्र प्रदेश में अत्यंत प्राचीन काल से विविध राजवंशों ने शासन किया। सातवाहनों के पश्चात 3री शताब्दी में यहाँ इच्छवाकु राजवंश आया, किंतु 4थी शताब्दी के प्रारंभ में ही इन्हें पल्लवों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। 5वीं तथा 6थी शताब्दी में आंध्र में विष्णु कुंडिन राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। 7वीं शताब्दी में चालुक्यों ने इस प्रदेश पर विजय की तथा पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई विष्णु वर्धन ने यहाँ पृथक राजवंश की स्थापना की, जो पूर्वी चालुक्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 999 में यह राजवंश चोलों का अधीनस्थ हो गया। 12वीं शताब्दी में चालुक्य शक्ति के हास्य के परिणाम स्वरूप आंध्र के पश्चिम भाग में उनके सामंत शासक काकतियों ने 1130 में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तथा लगभग 1200 में चोलों के पतन के पश्चात आंध्र के पूर्वी प्रदेश को भी जीत लिया। काकतीय शासक प्रतापरुद्र द्वितीय ने 1310 में अलाउद्दीन के आक्रमण को विफल कर दिया, किंतु 1326 में वह मोहम्मद तुगलक द्वारा पराजित हुआ एवं बंदी बना लिया गया, किंतु प्रतापरुद्र के नायकों ने प्रलय तथा काप्य के नेतृत्व में अपना प्रतिरोध बनाए रखा तथा वे व्यवहारतः संपूर्ण आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र कर सकने में सफल रहे। लगभग 1368 में काप्य की अन्नवोट नामक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई और उसने राजा चाल नाम से एक स्वतंत्र वंश की स्थापना की। अंततः 15वीं शताब्दी के प्रथम चरण में यह प्रदेश विजयनगर तथा कलिंग के बीच में विभक्त हो गया। आंध्र प्रदेश का दक्षिण भाग विजयनगर का अंग बन गया, जहां महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रगति हुई। यह संपूर्ण आंध्र इतिहास विशेष रूप से काकतियों तथा उनके उत्तराधिकारियों का क्षेत्रीय वंशावलियों, शासकीय प्रलेखों एवं मौलिक परंपराओं में सुरक्षित मिलता है। 19वीं शताब्दी में इन स्रोतों तथा प्रलेखों के आधार पर तेलुगु भाषा में व्यवस्थित इतिहास लेखन प्रस्तुत करने वाले कई ग्रंथों की रचना हुई। बुक पत्तनम रग बच्चरयुलु कृत तेलुगु देश चरित्र एक ऐसा दृष्टांत है। संस्कृत भाषा में साहित्यिक समीक्षा से संबंध ग्रंथों में विभिन्न आंध्र शासकों के ऊपर लिखे गए तमाम श्लोक मिलते हैं, जो मूलतः इन शासकों के दरबारी कवियों द्वारा लिखे गए थे। 15वीं शताब्दी 52 ने वेम नामक शासक के ऊपर वेश भूपाल चरित्र तथा वीर नारायण चरित्र नामक आख्यायिका लिखी। यह स्वयं को नवीन वान कहता है तथा हर चरित्र की शैली का अनुकरण करता है। बाण के समान वह भी वत्स गोत्रीय भार्गव तथा इस प्रकार पैतृक परंपरा के अनुसार इतिहास लेखन का विशेष रूप से अधिकारी था। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास लेखन डैश विजयनगर की स्थापना अपने आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य के निर्देशन में हरिहर बुक्का द्वारा हुई। स्वयं विद्यारण्य द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ राजकाल निर्णय तथा आत्मकथा विद्यारण्य काल ज्ञान में संस्थापकों की जीवनी तथा राज संस्थापना की परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। इनके पिता का नाम संगम था। बुक्का के पुत्र कंपन ने दूरा को तुर्कों से मुक्त किया। इसके विजय का विवरण स्वयं उसकी पत्नी गंगा द्वारा लिखे मधुरा विजय अथवा वीर कंपराय चरित नामक काव्य में हुआ है। इसमें पृष्ठभूमि के रूप में नायक के पिता बुक्का की जीवनी, विजयनगर की स्थापना तथा कंपन के विवाह का विवरण दिया गया है। बुक्का द्वारा अपने पुत्र को दिए गए उपदेश में तुर्क शासक को रावण के समान बताया गया है और राजकुमार से राम की भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है। प्रसंग वंश तुर्कों द्वारा किए गए विनाश कृत्यों का हृदय स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 1485 में अंतिम संगम शासक विरूपाक्ष, जो राजनैतिक तथा सैनिक दृष्टिकोण से अत्यंत दुर्बल शासक था, की हत्या हो गई, जिस पर नरसिंह ने संगम वंश को हटाकर साम्राज्य का पुनर्व्यवस्थापन किया एवं सालुब वंश की नींव डाली। इसने 1486 से 1491 तक शासन किया। डिंडम कुल के राजनाथ द्वितीय के सालुबा हुदय में नरसिंह का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। यह ग्रंथ नरसिंह के पूर्वजों का विवरण प्रदान करने के पश्चात उसके द्वारा कलिंग तथा तुर्कों के विरुद्ध किए गए युद्धों की चर्चा करता है। सालुब वंश अधिक दिनों तक नहीं रह सका और शीघ्र ही तुलुब वंश की स्थापना हुई। कृष्णदेवराय इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था और इसकी विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा के रूप में प्रतिष्ठा हुआ है। कुमार धूर जटी की तेलुगु रचना कृष्णदेवराय विजयमु में इसके विभिन्न विजयों की चर्चा है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त यहाँ धार्मिक आचार्यों तथा गुरुओं के ऊपर कई जीवन चरित्र लिखे गए। राजनीति से प्रत्यक्ष रूपेण संबद्ध न होने पर भी तत्कालीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर इन आचार्यों का बहुत अधिक प्रभाव था। कुछ दृष्टांतों में यहाँ जहाँ इनकी राजनीतिक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है, इस प्रकार की रचनाएं ऐतिहासिक महत्व की रचनाएं बन जाती हैं। विद्यारण्य का दृष्टांत इस प्रकार का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार सोमनाथ द्वारा व्यास तीर्थ नामक दार्शनिक तथा तर्कशास्त्री से संबद्ध जीवन चरित्र व्यास योग चरित्र से तत्कालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। व्यास तीर्थ सालुब नरसिंह से लेकर अच्युत राय तक के शासकों के समसामयिक थे। अच्युत राय 1529 से 42 के शासन काल के ऊपर दो संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं। तिरुम्मा लांबा नामक राजकन्या ने वृदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य लिखा। इसकी मुख्य कथा वस्तु अच्युत का सलग राजकुमारी वृदाम्बिका के साथ विवाह है, किंतु साथ ही इसमें इस वंश की वंशावली अच्युत के पिता के युद्धों का विवरण भी मिलता है। यह अच्युत के पुत्र वेंकटाद्री के रूप के राजकुमार रूप में अभिषेक से समाप्त होता है। राजनाथ तृतीय डिंडिम के अच्युत के रूप पर अच्युत्याराभ्युदय नामक ऐतिहासिक काव्य लिखा है। इसमें वंशावली अच्युत के पिता नरस के विभिन्न कार्यों तथा स्वयं अच्युत के सिंहासनरोहण पर एवं युद्धों का विस्तृत विवरण मिलता है। विजयनगर पर लिखी गई अन्य ऐतिहासिक रचनाओं में बासव रचित शिवत्व रत्नाकर 18वीं शताब्दी का प्रारंभ तथा इसी काल की किसी अज्ञात लेखक की रचना विभाग रत्नमाला उल्लेखनीय है। अच्युत राय के पश्चात विजयनगर का हास हो गया एवं विभिन्न प्रांतीय शासकों कुष्ठ में नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक के इस काल से संबंधित विविध ऐतिहासिक रचनाएं संस्कृत तेलुगु तथा तमिल भाषा में लिखी गई। कलिंग में इतिहास लेखन 10 कलिंग गुप्त साम्राज्य का भाग था। गुप्तों के पतन के पश्चात विभिन्न प्रदेशों पर क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। पांचवी शताब्दी में कलिंग के दक्षिणी भाग में मराठों का प्रभुत्व हुआ। इनके पश्चात 496 में गंग शासकों की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हुई, जो अविच्छिन्न रूप में लगभग 1000 वर्षों तक 1435 तक चलती रही, जो किसी एक प्रदेश पर एक ही शासन वंश की प्रभुसत्ता की निरंतरता का प्रतिमान है। कलिंग से प्रभुत्व मात्रा में इतिहास लेखन मिलता है। इनमें वंशावलियाँ प्रमुख हैं, जिनमें कुछ संस्कृत में एवं कुछ ओड़िया में हैं। मंदिरों के अपने लेखागार इन वंशावलियों के प्रमुख स्रोत होते थे। पूरी लेखागार से ओड़िया मादला पांजी का संकलन हुआ, जिसका एक भाग राजचरित राजाओं से संबद्ध है। ऐसा विश्वास है कि यह इतिवृत्त गंग शासक अनंत वर्मन पंचम चुक्त गंग के आदेश से 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखा गया और तब से सदैव इसके आधुनिकतम बनाए रखा गया है। वासुदेव रथ कृत गंग वंशानुचरित जो एक चंपू काव्य है, इस इतिवृत्त की सामग्री को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त पवित्र स्थानों के ऊपर कई महात्म ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। ये परंपराएं कलिंग के इतिहास को एक भिन्न परिपेक्ष में देखती है। गंग शासन वंश ने दक्षिण से अपना प्रभुत्व विस्तार किया था और सनेह सनेह संपूर्ण कलिंग को जीत लिया। ये परंपराएं कलिंग इतिहास को पूरी के दृष्टिकोण से देखती हैं, जो कि उत्तर में स्थित है। इनके अनुसार गंग राजवंश 12वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जबकि अनंत वर्मन पंचम ने उत्तर पर विजय प्राप्त की। साथ ही इनमें कलिंग के इतिहास को पौराणिक शासकों से संबद्ध करने की भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। सातवाहनों यवनों तथा गुप्तों का भी इतिहास इनमें दिया गया है। इनमें केसरिन तथा गंग शासन वंशों के निर्माणात्मक कार्यों की चर्चा पर विशेष बल दिया गया है। 15वीं शताब्दी के मध्य में गणपति शासन वंश का प्रारंभ हुआ। इसके संस्थापक कपिलेंद्र के पुत्र पुरुषोत्तम की सामरिक उपलब्धियों का विस्तार पूर्ण विवरण मिलता है। मुकुंद कलिंग का अंतिम स्वतंत्र शासक था तथा एक शासक के रूप में इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, किंतु 1568 में वह तुर्कों से पराजित हुआ एवं समस्त प्रदेश उनकी विनाश लीला का क्षेत्र बना। तुर्कों ने खुर्दा के शासक रामचंद्र को यहाँ अपना अधीनस्थ शासक नियुक्त किया, जिसके वंशज तुर्कों के अधीन रहते हुए 18वीं शताब्दी तक यहाँ शासन कार्य करते रहे, जबकि यह प्रदेश मराठों द्वारा जीत लिया गया। महाराष्ट्र का इतिहास लेखन 12वीं शताब्दी के अंत में यादव सेबुन राजवंश ने चालुक्यों का उन्मूलन किया, किंतु इस वंश के विषय में कोई ऐतिहासिक रचना सुरक्षित रखी नहीं जान पड़ती, किंतु चतुर वर्ग चिंतामणि में 13वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध में महादेव के अंतर्गत मंत्री के रूप में सेवा कर रहे हिमाद्री के कुछ ऐतिहासिक टिप्पण प्राप्त होते हैं। इसमें इस वंश की वंशावली के अतिरिक्त महादेव के मालव तथा आंध्र के विरुद्ध युद्धों का भी विवरण प्रदान किया गया है। 14वीं शताब्दी में सेबुनों द्वारा तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लिए जाने पर महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रीय शासक भी समान रूपेण तुर्कों के अधीनस्थ हो गए, किंतु कुछ ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने की चेष्टाएं की। उदाहरणार्थ मयूरगिरी के राज्य में राजपूतों की एक शाखा ने, जो स्वयं को कानकुब्ज के राष्ट्रकूटों से उद्भूत मानती थी, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। 16वीं शताब्दी के अंत में कवि रुद्र ने संस्कृत में इन राजपूतों के ऊपर सौराष्ट्रोढ़ वंश नामक काव्य की रचना की। अपने काव्य के 20वें सर्ग में रुद्र ने क्षेत्रीय तुर्क शासकों के विरुद्ध अकबर द्वारा प्रेषित एक सैनिक अभियान में अपने समसामायिक शासक नारायण के पुत्र प्रताप को अकबर के पुत्र की अपेक्षा अधिक शौर्य प्रदर्शित करते हुए दिखाया है। अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते हुए वह नारायण को तो सार्वभौम कहता है, जबकि अकबर को केवल दिल्ली पति कहता है। धीरे धीरे इस प्रदेश में स्थापित तुर्क राज्यों के भीतर मराठे अपनी शक्ति में वृद्धि करते दिखाई पड़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन पर भारतीय नेतृत्व मराठी भोंसला कुल को प्राप्त हुआ। भोंसला के अंतर्गत हुआ इतिहास लेखन एक कठिन जटिल विषय है। इसकी वस्तु सामग्री विपुल है और कई प्रकारों में है। तुर्कों के अंतर्गत दक्षिण में युद्ध करने वालों में शाह भोंसला जन्म 1594 मृत्यु 1664 मुख मराठा सेनापति था, जिसने कर्नाटक में एक प्रकार से स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया था। जय राम कृत समसामायिक चंपू काव्य राधा माधव विलास में इससे भेद पाठ के गुहिल पुत्रों की सिसोदिया शाखा से संबद्ध किया गया है। शाह का गोलकुंडा विजय तथा अन्य युद्धों का भी उल्लेख है। इसके कार्यों का और विस्तृत विवरण परमानंद कृत सूर्यवंश नामक काव्य में मिलता है। शाह की विभिन्न विजयों के अतिरिक्त इसमें उसके पुत्र शिव अर्थात शिवाजी तथा उनके जीवन की घटनाओं और उसके बाद की भी शंभू तथा राजा राम से संबद्ध ऐतिहासिक घटनाएं की चर्चा हुई है। स्वयं लेखक की मृत्यु 1687 में शिवाजी की मृत्यु के 7 वर्षों बाद हुई। सूर्यवंश स्वयं को 100 सर्गों का काव्य बताता है, किंतु संप्रति इसके केवल 60 सर्ग उपलब्ध हैं। जयराम कृत परनाल पर्वत ग्रहणाख्यान शिव द्वारा परनाल के किले पर विजय का उल्लेख है, जिसे 1673 में उसने बीजापुर से छीना। शिवाजी के सिंहासनारोहण पर अनिरुद्ध ने शिवराज राजाभिषेक कल्पतरु की रचना की तथा इसी विषय पर विशेश्वर कोष्ठ में गागा भट्ट द्वारा लिखे कायस्थ धर्म प्रदीप की भूमिका में शिव को मलेच्छों के दमन के लिए विष्णु का अवतार बताया गया है। अपने राज रामचरित में केशव ने राजा राम के जिंजी अभियान का विवरण दिया है। 1675 में दक्षिण में एक ने नायकों से तेजनगर को छीनकर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। इनके अंतर्गत कई ऐतिहासिक कृतियों की रचना हुई। वेंकटेश्वर कृत भोसल वंशावली में तंजनगर के मराठा शासकों का विवरण है। एक के पुत्र शाह के ऊपर नलाकृत चंपू धर्म विजय प्रमुख ग्रंथ है। उसने ढूंढी राज को अपना राजकीय इतिहासकार नियुक्त किया था, जिसने राजा के जीवन पर एक लंबी ऐतिहासिक भूमिका के साथ रामायण पर एक टीका लिखी। 1712 में उसका भाई सर्भ शासक बना, जो जगन्नाथ के सर्भराज विलास का नायक है। महाराष्ट्र का परवर्ती इतिहास लेखन मराठी में है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विपुल संख्या में प्राप्त बखर कोष्टक में इतिवृत्त है। इनके अतिरिक्त विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर प्रचुर मात्रा में लोकगीत उपलब्ध हैं, जबकि उपरोक्त संस्कृत ग्रंथ समसामायिक स्रोत हैं। मराठी बखरों में अधिकांश गौण इतिहास लेखन भी है। सभासद का बखर जो राजा राम के आदेश पर लिखा गया, इसी प्रकार का दृष्टांत है। बाद के बखर लेखकों ने सभासद को ही आधार बनाया है। यह बखर तिथि क्रमिक रूप में नहीं है, अपितु घटनाओं का लेखन अव्यवस्थित प्रकार से जिस रूप में लेखकों को इनका जब स्मरण हुआ किया गया है, यह शिवाजी के जीवन पर है। परवर्ती बहुसंख्यक बखरों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिटनीस कृत 1810 में संपूर्ण बखर है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औरंगजेब की पराजय से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मराठा शक्ति भारतवर्ष की सर्वोच्च शक्ति थी। इन इतिवृत्तों में तत्कालीन मराठा शासकों के इतिहास लेखन के प्रति दृष्टिकोण का परिलक्षित होना स्वाभाविक है। ये इतिवृत्त पौराणिक इतिहास लेखन की परंपरा की निरंतरता बनाने की चेष्टा करते हैं। इस दृष्टिकोण से इन बखरों पर अभी तक नहीं के बराबर काम हुआ है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी औपनिवेशिक राज्य की प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेखन हुआ। 1900 में प्रकाशित रनाडे के राइज ऑफ द मराठा पावर में 17वीं शताब्दी की महाराष्ट्र की घटनाओं को भारतीय राष्ट्रीय चेतना तथा धर्म के उदय के रूप में देखा गया है, जिसने भावी राष्ट्रीय एकता के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। राजबाड़े ने मराठ इतिहास के प्रलेखों का संग्रह किया तथा उन्हें मराठेंचया इतिहासांची साधने अर्थात मराठों के इतिहास के स्रोत में प्रकाशित किया। इसके बाद बहुतेरे लेखकों द्वारा मराठा इतिहास पर शोध कार्य प्रस्तुत होते रहे हैं। उपसंहारिका टिप्पणी डैश। इस अंतिम अध्याय में लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक के उद्देश्य तथा स्वरूप को स्पष्ट किया है। पुस्तक का उद्देश्य इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को विभिन्न युगों के दृष्टांतों के साथ प्रस्तुत करना है। आधुनिक ऐतिहासिक गवेषणा में उपरोक्त ग्रंथों को साहित्यिक मात्र मानकर छोड़ देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जो उपयुक्त नहीं है। अभिलेखों को पुस्तक की विषय सामग्री से बाहर रखा गया है। साहित्यिक ग्रंथों के कई वर्ग हैं जो स्वरूप में कम से कम अंशतः ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक नाटकों के अतिरिक्त सामाजिक इतिहास के अध्ययन में काव्य साहित्य से पर्याप्त ज्ञान की अपेक्षा की जानी चाहिए। विभिन्न धर्मशास्त्र ग्रंथ तथा अर्थशास्त्र अन्य प्रमुख स्रोत है। बातसायन का काम सूत्र सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में ज्ञानवर्धन करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। तुर्कों तथा अंग्रेजों ने अपने शासन कालों पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिन्हें इस पुस्तक के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया गया है। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में पुस्तक में उल्लेखित मराठा तथा अन्य लेखकों से अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेखकों जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा है के नाम हैं। रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रकाशित 1901 तथा 1903 ईस्वी में लिखा। केपी जायसवाल, जिन्होंने अपनी कृतियों में इतिहास लेखन में आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। के एम पन्निकर लिखित ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री तथा एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस ने भारतीय तथा एशियाई परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास द्रष्टव्य है। एस ए डांगे ने फ्रॉम प्रीमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी में भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति को वेद तथा इतिहास से खोजा है। 20वीं शताब्दी में लिखी गई हिंदी की इतिहास पुस्तकों में जयचंद्र की भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जी एच ओझा की 5 जिल्दों में राजपुताने का इतिहास, भगवत दत्त का भारतवर्ष का बृहद इतिहास उल्लेखनीय है। इन लेखकों का दृष्टिकोण परंपरागत भारतीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। निष्कर्षतः लेखक के अनुसार संक्षेप में पुस्तक की गवेषणा के परिणामों को इस प्रकार दिया जा सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसे वो सार्वभौमिक इतिहास के रूप में प्रस्तुत करते हैं, का व्यापक रूप रखते हैं। विभिन्न बौद्ध तथा जैन ग्रंथ इनके वक्तव्यों तथा निष्कर्षों की परीक्षा के लिए सामग्री उपस्थित करते हैं और इस प्रकार पुराणों के पूरक ग्रंथ हैं। कुछ बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में सार्वभौमिक इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। मंजूश्री मूलकल्प इस दृष्टिकोण से एक उल्लेखनीय बौद्ध ग्रंथ है। विभिन्न जीवन कथाएं, उदाहरणार्थ बाण तथा बागपति राज, तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों का निर्माण करती है। तुर्कों के आक्रमण के पश्चात सार्वभौमिक इतिहास लेखन की परंपरा समाप्त होती दिखाई पड़ती है। इसके स्थान पर विभिन्न उद्देश्यों के पृथक इतिहास ग्रंथ लिखे जाने लगते हैं। यद्यपि क्षेत्रीय इतिहास को पौराणिक इतिहास लेखन से संबद्ध करने की प्रवृत्ति स्पष्ट है, राजस्थान के ऐतिहासिक परंपरा अन्य प्रदेशों से मूलतः भिन्न है। इसमें क्षेत्रीय इतिहास के स्थान पर विभिन्न शासन वंशों का इतिहास लेखन हुआ है। ये शासन वंश सामयिक विपत्तियों के कारण अपना मूल स्थान छोड़ भी सकते हैं तथा यह भी आवश्यक नहीं है कि वे राजस्थान तक ही सीमित हों, अपितु ये अत्यंत प्राचीन काल के प्रसिद्ध राजवंशों से अपना संबंध स्थापित करते हैं। समीक्षा। राजस्थान